أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصاب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اشرائے مجالس زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی آج اس آٹھویں مجلس میں شہزادی کا تربیت اولاد کا طریقہ بیان کریں گے، اور اس سے پہلے خواتین کے بارے میں جو علماء کے بیانات ہیں ان کو مختصراً بیان کریں گے کہ علماء نے خواتین کے حوالے سے کیا تحریر فرمایا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف علماء نے یہ بیان فرمایا کہ عورت پورے معاشرے کی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں خواتین، خواتین کی آغوش میں انسان بنتا ہے، سنورتا ہے. خواتین انسان ساز ہیں، مملکتوں کی بہتری اور بدبختی عورت سے وابستہ ہے. عورت صحیح تربیت کر کے کسی بھی انسان کو واقعی انسان بناتی ہے اور ملکوں کو آباد اور خوشحال بناتی ہیں. تمام بھلائیوں کا سرچشمہ عورت کی آغوش ہے. مردوں کا جو حق اقوام پر ہے، عورتوں کا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ عورت نے ہی شجاع بہادر مردوں کی پرورش کی ہے. مرد اگر تلوار چلاتا ہے تو عورت تلوار چلانے والے کو بناتی ہے. عظیم انسانوں کی بہترین تربیت کا عورت کی آغوش ہے. صرف عورت ہی ہے جو اپنی آغوش سے ایسے بہترین افراد معاشرے کو دے سکتی ہیں جن سے سعادت مند معاشرے تشکیل پائیں، اور یہی عورت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. معاشرے کی ترقی میں، تعمیر میں عورت کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کہا گیا کہ عورت اگر ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی ہے دوسرے ہاتھ سے دنیا کو ہلا سکتی ہے. عورت کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہے اور یہ کس حد تک بچوں پر، اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مولا کائنات جیسے شجاع اور بہادر کو جب عباس غازی جیسا بہادر بیٹا چاہیے تھا تو مولا کائنات نے بہادر خاندان کی خاتون جناب ام البنین کا انتخاب کیا. آیت اللہ سید علی یہ کہتے ہیں کہ سارے معماروں میں سب سے اعلیٰ اور بہترین معمار ماں ہے. ممکن ہے دنیا کے بڑے سائنسدان مل کر کوئی پیچیدہ قسم کا الیکٹرانک آلہ ایجاد کر لیں، فضاؤں کو تسخیر کرنے والے آلات ایجاد کر لیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ اہمیت حاصل نہیں جو ایک اعلیٰ صفات کے حامل انسان بنانے والے کی. اور یہ کام صرف ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے. عورت اپنے پیار و محبت بھرے دامن سے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرے جو روحانی نفسیاتی لحاظ سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی صحیح و سالم ہو. خاتون جنت ایک مسلمان عورت کے لیے کامل نمونہ عمل ہیں. آپ کی اہم ترین ذمہ داری بچوں کی پرورش تھی. خدا نے مقرر کر دیا تھا کہ پیشوایان دین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ نسل سے ہوں. حضرت فاطمہ خود دامن وحی کی تربیت یافتہ تھیں اور دین اسلام کے تربیتی آداب سے خوب واقف تھیں شہزادی، اور جانتی تھیں کہ انہیں اماموں کی تربیت کرنی ہے جو کہ اسلام کی حقیقت پہچانوانے والے ہوں گے. ان کے وجود سے حقائق اور معارف کے چشمے جھلکیں گے. उन्हें हसन जैसे बुर्दबार फर्जंद की तरबियत करनी थी, जो इस्लाम को दरपेश नाजुक वक्त पे इस्लाम की मसलहतों के तहफ्फुज़ के लिए माविया से सुलह करके दुनिया वालों पर वाजे कर दें कि इस्लाम हत्तुल इम्कान जंग पे सुलह को तरजीह देता है, और इस तरह मुआविया की आवाम से धोखे दही को आशकार कर दें। हजरत जहरा को सईद शहदा की तरबियत करना थी, जो इस्लाम को ज़रूरत पड़ने पर अपनी और अपने अजीज़ों की जानों को दीन के दिफा और जुल्म सितम के मुकाबले के लिए फ़िदा कर दें, और शजर इस्लाम को अपने खून से सैराब कर दें। आपको जनाब जैनब और उम्मे कुलसूम की तरबियत करनी थी, जो अपने खुतबों से बनी उमैया के जालिम हुक्मरानों को रुसवा कर दें और उनके मजमूम मकासद का रास्ता रोकें। इस एजाज आमीज दर्ज गाह से तरबियत पाने वाली अजीम शख्सियात से शहजादी की पुरअजमत रूह और गैर मामूली सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कितनी खवातीन घरेलू मामलात को मामूली करार दे दी है, मगर शहजादी की नज़र में घर बहुत वसी और हसास मरकज़ था। आप इसे इंसान साजी का अजीम कारखाना समझती थी, फिदाकारी शुजात की तर्सगाह समझती थी। शहजादी जानती थी और हमें भी जान लेना चाहिए, आयतुल्लाह का बयान है जो आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं, कि शहजादी जानती थी ये बच्चे इस मदरसे से, किस मदरसे से, घर से जो तरबियत पाएंगे, जो सबक यहाँ से हासिल करेंगे वो माशरे में जाहिर होगा, और जो यहाँ से सीखेंगे आइंदा उसी पर अमल करेंगे। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी अपनी किताब फातमतुज़ ज़हरा इस्लाम की मिसाली खातून, इस किताब में वो लिखते हैं कि शहजादी के घर में बच्चों की इस्लामी तरबियत के लिए एक आला और मिसाली दर्सगाह की बुनियाद रखी गई। ये दर्सगाह हज़रत अली और हज़रत फातमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए चलाई गई, पैगम्बर इस्लाम इसके निगरान थे। इस दरसगाह के तरबियती उसूल बराए रास्त परवरदिगार आलम की जानिब से नाजिल होते थे। इजमाली तौर पर यह कहा जा सकता है कि शहजादी की तरबियत का तरीका वही तरबियती तरीका है जो कुरान और अहादीस में बयान हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चों की तरबियत एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके मानी इंतहाई वसी और अहम है। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि बच्चों की परवरिश का मतलब सिर्फ यही है कि बाप उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम कर दे और माँ उनके काम कर दे, मसलन कपड़े बदलवाना, खाना तैयार करके खिलाना वगैरह अंजाम दे दे। और कितने ही वालदैन ये भी समझते हैं कि औलाद पर वालदैन का हक है और औलाद को आखिरत में जवाब देना होगा वालदैन की इताअत के सिलसिले में, मगर माँ बाप बरी जिम्मा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसी वक्त दीन इस्लाम वालदैन के दोष पर जिम्मेदारी आयद कर देता है। पहले मरहले में वालदैन को चाहिए जिम्मेदारियों को पहचानें और दूसरे मरहले में उनकी अंजामदही के लिए अल्लाह से तौफीक तलब करें। इस्लाम बच्चे की शख्सियत को वालदैन की तरबियत परवरिश का मरहूने मिन्नत समझता है। वालदैन की तमाम हरकत व सकनात गुफ्तार बच्चे पे असर अंदाज होते हैं। वालदैन का फरीज़ा है कि वो इंतहाई संजीदगी के साथ बच्चे के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखें, मोहतात रहें कि उनका मासूम बच्चा, जो कि अच्छी फितरत पर खलक हुआ है, खुदा ना करे गुनाह और बदबख्ती से दो चार ना हो जाए। शहजादी के घराने में बच्चों के उसूल तरबियत के हवाले से कुछ दर्स मिलते हैं जिन्हें बतौर खुलासा बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वालदैन के लिए खुसूसन माओं के लिए मुफीद साबित होंगे। पहला दर्स दर्स मोहब्बत है। इस्लाम चाहता है कि बच्चे माँ के हाथ चूमें, मगर इसके लिए तरबियत करना होगी। शायद अक्सर लोग ये समझते हैं हों कि बच्चे की तरबियत का आगाज़ उस वक्त से होता है जब वो अच्छाई और बुराई को दर्क करने लगें, समझने लगें, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तालीम और तरबियत के माहरीन तस्दीक करते हैं कि बच्चे की तालीम और तरबियत का आगाज़ उसके पैदा होते ही शुरू कर देना चाहिए। शहजादी के घराने के प्यार और मोहब्बत को बयान करने से पहले ये बता दें कि माहरीन नफ्सियात की तहकीक के मुताबिक बच्चे मोहब्बत और शफ़क़त के इजहार के मोहताज होते हैं। वो चाहते हैं कि वालदैन उनके साथ इजहार मोहब्बत करें। एक बच्चे को इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं होती कि वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है या गरीबाना ज़िंदगी गुजार रहा है। वो तवज्जा इस बात पर देता है कि उसे प्यार किया जाता है या नहीं। उसकी आइंदा शख्सियत और इखलाक का सरचश्मा यही माँ की ममता और बाप का मुखलसाना प्यार होता है। और ये जो मुखलिसाना प्यार और मोहब्बत होता है, ये बच्चे की रूह में अच्छे अखलाक और हुस्ने ज़न की तलकीन करता है। लेकिन इस्लाम जहाँ वालदैन पर ये फ़र्ज़ करता है कि बच्चों से मोहब्बत करें, वहाँ उन्हें मोहब्बत में ज़्यादती से, इफ़राज़ से भी मना करता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम ने फरमाया, बदतरीन वालदैन वो हैं जो अपनी औलाद के साथ नेकी और मोहब्बत में इफराज से काम लेते हैं। इसकी वजह ये बताई गई है कि ज़्यादा मोहब्बत की वजह से बदबख्ती और नाकामी होती है, बच्चा खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है। और भी बहरहाल इसके नुकसान हैं। शहजादी के घर में तरबियत का तरीक़ा ऐसा है जिसमें नफ्सियाती उसूलों को भी मद्देनज़र रखा गया। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में मुकम्मल तौर पर मोहब्बत के सबक का इजरा हुआ और हज़रत रसूल अल्लाह ने अमली तौर पर शहज़ादी को सिखाया। रिवायत में आया है कि एक दिन रसूल अल्लाह नमाज जमात में मशगूल थे, जब आप सजदे में जाते, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी की पुश्ते मुबारक पर सवार हो जाते थे। जब हज़रत सजदे से सर उठाना चाहते तो सईद शुहदा को पुश्त से हटाकर ज़मीन पर बिठा देते, जब आप दोबारा सजदे में जाते तो सईद शुहदा फिर नबी की पुश्ते मुबारक पर सवार हो जाते थे। कमसिनी की बात हो रही है, कमसिनी का ज़माना है। पैगंबर फिर उसी तरह उन्हें हटा देते। इसी कैफियत में पैगंबर इस्लाम ने नमाज तमाम की। एक यहूदी ये माजरा देख रहा था, नबी से कहने लगा कि बच्चों के साथ आपका जो बर्ताव है, हम इसको पसंद नहीं करते। तो नबी ने फरमाया कि अगर तुम भी खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखते होते तो बच्चों के साथ ऐसी ही नरमी से पेश आते। वो यहूदी नबी करीम के रवैये की वजह से मुसलमान हो गया। एक रिवायत में है कि नबी ने फरमाया, जो शख्स भी बच्चों से नरमी से पेश ना आए और बड़ों का एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। शहजादी का बच्चों को मुखातिब करने का तरीक़ा हदीसे किस्सा में नज़र आता है कि जब हज़रत हसनैन एक एक करके हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आए और अपनी मादरी गिरामी को सलाम किया, जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब सलाम के साथ फरमाया था, या कुर्रत आइनी व समर तक़वादी, हम सुनते रहते हैं, ए मेरी आँख के तारों, ऐ मेरी आँख के नूर, मेरे मेवाए दिल, यानी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ गुफ्तगू फरमा रही हैं। एक दिन नबी करीम हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े से गुज़र रहे थे कि आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ आई, तो आपने शहज़ादी से फ़रमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत होती है। अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन पैगंबर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने दोशे मुबारक पर सवार किया हुआ था और रास्ते में कभी हसन अलैहिस्सलाम का बोसा लेते, कभी हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लेते थे। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं, इन दोनों बच्चों से? तो नबी ने फरमाया, हाँ, जो शख्स हसन और हुसैन को दोस्त रखे उसने मुझे दोस्त रखा, और जो शख्स इनसे दुश्मनी करे उसने मुझसे दुश्मनी करी। पैगंबर बाज़ औक़ात जनाब फ़ातिमा से जब ये फरमाते कि हसन और हुसैन को मेरे पास लाओ, और जब शहज़ादी खिदमत रसूल में लेके जाती तो रसूल अल्लाह उनको सीने से लगाते और फूल की तरह सूंघते। कितने ही माँ बाप बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे होते, मोहब्बत नहीं दे पा रहे होते, बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, आसाइशों के लिए दिन या रात मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वालदैन की मोहब्बत और कुर्ब का नेमुल बदल नहीं हो सकती। एक वक्त आता है बच्चे जवान हो जाते हैं, वालदैन ज़यीफ़ हो जाते हैं। अब वालदैन ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास बैठे, थोड़ा टाइम दे, मगर अब बच्चा भी अपने माँ बाप की तरह ही मसरूफ़ हो चुका है। जैसा कि जवानी में उसके माँ बाप मसरूफ़ थे, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब ये बच्चा उसी तरह मसरूफ़ हो गया है अपनी औलाद के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए, हमें तंग ना करे, रो रहा है, परेशान कर रहा है, कहीं मसरूफ़ रहा है, उसे मोबाइल दे दिया जाता है या केबल टीवी वगैरह के आगे उसको बिठा दिया जाता है ताकि कुछ देर ज़रा हमें सुकून मिल जाए, ये हमें तंग ना करे, ये थोड़ी जहमत ना बर्दाश्त करना, बच्चे को मसरूफ़ करने के लिए उसको ये चीज़ें दे देना, इनका कितना बड़ा नुकसान है, इसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। कोई भी अक्लमंद इंसान अपने ऐसे बच्चे को जिसे गाड़ी चलाना ना आती हो, गाड़ी नहीं देता है चलाने के लिए। जैसे ड्राइविंग नहीं आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ एक्सीडेंट का ख़तरा है, तो वहाँ तो एक्सीडेंट समझ में आ रहा है, और ये जो बच्चे को मोबाइल इंटरनेट और ना जाने क्या कुछ दे दिया जाता है, इसका नुकसान हमें समझ नहीं आता। और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट के बाद समझ में आए, किसी हादसे के बाद समझ में आए, तो उसमें पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप के ऊपर आई होगी, क्योंकि बच्चे को इस चीज़ का आदी किसने बनाया है। ये जो बच्चा चंद मिनट ही सही जो कुछ देखता है, उसकी रूह तक मुतासिर होती है। एक माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चों के नेक होने के लिए तस्बीह पढ़ती हूँ, और बच्चे जो थे वो केबिल पे ना जाने क्या कुछ देख रहे थे। आप एक बात बताएं कि एक तस्बीह कितनी देर में पढ़ी जाती है? 2 मिनट, बहुत से बहुत 10 मिनट में पढ़ ली जाती होगी। ये 2 मिनट या 5-10 मिनट तस्बीह पढ़ी जाए, और बाकी 24 घंटे बच्चे जो चाहें करें, जो चाहें देखें, तो ये बताइए उस तस्बीह का कितना असर होगा। 24 घंटे के दरमियान न जाने कितनी देर वो बच्चा अपनी आँखों से क्या कुछ देख रहा है, अपने कानों से क्या कुछ सुन रहा है, उसका जहन, दिमाग, उसकी रूह मुतासिर हो रही है। उसका असर ज़्यादा होगा 24 घंटे के दौरान जो अपनी आँखों से देखता है, या तस्बीह पढ़ के उन बच्चों पर दम करने का असर ज़्यादा होगा। इस बात को आप इस तरह समझें कि दवा खाई एक टाइम एक गोली, और बाकी के 24 घंटे वो चीज़ें खाएं जिनसे डॉक्टर ने मना किया था। तो दिन में एक दफ़ा जो गोली खाई है वो क्या मुआवजा दिखाएगी? जाहिर सी बात है कि मुआवजा तो नहीं दिखाएगी, उसके साथ परहेज की भी ज़रूरत थी। तो तरबियत के साथ तस्बीह और दुआ फ़ायदा देगी। तरबियत अपनी जगह पर एक अहमियत रखती है। तरबियत के साथ साथ दुआ की जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, ये अपनी जगह पर इसका एक असर है, लेकिन तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुरूद भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहज़ादी के घराने से जो दूसरा दर्स मिलता है वो शख्सियत की परवरिश का मिलता है, कि बच्चे की तरबियत करने वाले अगर बच्चे को एहतराम ना दें, उसकी शख्सियत को मामूली ज़ाहिर करें, तो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा और अपने आप को बेकीमत, हकीर समझने लगेगा। ऐसा बच्चा बड़ा होकर अपने आप को कोई कारनामा अंजाम देने के लायक नहीं समझेगा, और बआसानी जिल्लत कबूल कर लेगा। इसके बरखिलाफ़ अगर वो अपने आप को साहिब वक़ार शख्सियत समझता होगा, तो फिर वो पस्त कामों के लिए तैयार ना होगा, जिल्लत का बोझ नहीं उठाएगा। और ऐसी ज़ाती बुजुर्गवारी बड़ी हद तक घरेलू तरबियत वालदैन की शख्सियत से वाबस्ता होती है। इस सिलसिले में माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि बच्चे की तरबियत करने वाले को चाहिए कि बच्चे की शख्सियत की परवरिश करें, उसे बुलंद हिम्मत बनाएं, और मज़ीद चंद बातों की नसीहत करते हैं। उसमें पहली बात तो यह है कि बच्चे से मोहब्बत की जाए, जैसा कि बयान कर दिया गया, और दूसरी बात यह बताई गई कि बच्चे की अच्छी सिफात का जिक्र किया जाए, खुद उसकी मौजूदगी में भी किया जाए और दूसरों की मौजूदगी में भी उसकी तारीफ़ की जाए, उसे इज्जत नफ्स का सबक सिखाया जाए। नबी करीम ने बारहा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी ने बारहा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि हसन और हुसैन अहले बहिश्त में सबसे बेहतरीन हैं और उनके बाबा उनसे बेहतर हैं। नबी ने फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो और उनके आदाब को बेहतर बनाओ ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएं। पैगंबर हज़रत फातिमा की औलाद की शख्सियत परवान चढ़ाने में कोशां रहते थे, और हज़रत जहरा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी उसी दस्तूरुल अमल की पैरवी करते थे। इस घराने बच्चों की तौहीन या इज्जत नफ्स मजरूह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा इज्जत और एहतराम दिया गया। यही अजमत नफ्स और बुजुर्गी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मुख्तसर फौज के साथ यजीद के लश्कर के सामने डट गए, जिल्लत कबूल नहीं की। हयात मिन्नत जिल्ला, जिल्लत हमसे दूर है। इसी तरबियत की बरकत थी कि जनाब जैनब कुबरा तमाम तर मसाइब के बावजूद यजीद के जुल्म सितम से मरूब नहीं हुई। जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के जानू पर बैठे हुए हैं, नबी उनका बोसा लेते हैं और फरमाते हैं तुम बुज़ुर्ग हो और बुज़ुर्ग ज़ादे हो, इमाम और इमाम के फर्जंद हो और इमामों के बाप हो, तुम हुज्जत हो और 9 हुज्जतों के बाप हो जिनमें से आखिरी हुज्जत कायम होंगे। बच्चे की इज्जत की जाएगी तो बच्चा पलट के इज्जत देगा। और ये कहना कि हम बच्चे को इज्जत दें, तो आप बच्चे ये ना समझे कि आप बच्चे को इज्जत दे रहे हैं, आप नेमत परवरदिगार को इज्जत दे रहे हैं। औलाद नेमत परवरदिगार है। तीसरा दर्स ईमान और तकवे का है। माहिर नफ्सियात के एक गिरोह का अकीदा यह है कि बच्चे इसकी काबिलियत रखते हैं कि उन्हें दीनी तालीम और तरबियत दी जाए, बालिग होने का इंतज़ार ना किया जाए। तरबियत करने वाले दीनी मतालिब को सादा और आसान करके बच्चों को समझाएं। इस्लाम भी इसी नज़रिए की तायद करता है, और पैगंबर इस्लाम ने हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में बच्चों की इसी बचपन और शीरख्वारगी के ज़माने में दीनी तालीमात का इजरा शुरू कर दिया था। जब हज़रात हसनैन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नबी करीम ने उनका बोसा लिया और उनके दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में अकामत कही। और शहज़ादी फ़ातिमा के बारे में ये मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ खेलते हुए फरमाती हैं, अशआर में फरमा रही थी कि बाप की मानिंद शुजा बनना, खुदा परस्त बनना, दीन का दिफा करना, खुदा की इबादत करना और कीना परवर अफराद से दोस्ती न रखना। यानी शहजादी बच्चों के साथ खेल के दौरान भी उन्हें शुजात, हक के दिफा और इबादत इलाही का दर्स देती थी। अबू हुरैरा से मनकूल है कि रसूल अल्लाह के पास ज़कात की मद में कुछ खजूरें मौजूद थीं जिन्हें वो फ़ुकरा में तकसीम कर रहे थे। फारिग होने के बाद जब आप जाने के लिए उठें और आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया है, गोद में लिया है, तो देखा कि वो उन खजूरों में से एक खजूर मुंह में लिए चूस रहे थे। बहुत छोटे से हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है रिवायत में ही बताया जा रहा है कि नबी करीम गोद में लेके जा रहे हैं, तो यकीनन बहुत छोटे से हैं। अब उन्होंने एक खजूर मुंह में ली भी थी तो चूस रहे थे। पैगंबर इस्लाम ने वो खजूर उनके मुंह से दाहिने मुबारक से निकाल दी। फरमाया, बेटा हसन, आले मोहम्मद सदका नहीं खाते। हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, लेकिन नबी जानते हैं कि हराम गिज़ा का असर बच्चे की रूह पर भी पड़ता है, और ये उसूल बच्चे को इसी आगाज़ से जानना चाहिए कि वो खाने पीने के मामले में आज़ाद नहीं, उसे हलाल और हराम का पाबंद रहना चाहिए। और जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने जद की सीरत पर अमल किया और यही अमल अंजाम दिया कि जब अहले बैत को असीर करके कूफे लाया गया और लोग बच्चों पर रहम खाकर उन्हें सदक़े की खजूर और रोटी दे रहे थे, तो जनाब उम्मे कुलसूम ने रोटी के टुकड़ों खजूरों को बच्चों से लेकर फेंक दिया और फरमाया कि हम अहले बैत पे सदका हराम है। जैसा कि आगाज़ में ये बात कही गई मजलिस के आगाज़ में कि बच्चा जो घर में तरबियत पाएगा बाहर उसी का मुजाहरा करेगा, शहज़ादी ने अपने घर में यही तरबियत पाई थी। चौथा दर्स नज़्म व ज़ब्त और दूसरों के हुकूक़ का लिहाज करना है। एक अहम बात जो कि वालदैन के लिए काबिल तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि वो बच्चे पे नज़र रखें कि वो अपने हक़ से तजावुज़ ना करे और दूसरों के हक़ को मोहतरम समझे। उसे ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने की तलकीन की जाए, इस तरह तरबियत की जाए कि ना तो वो अपना हक लेने से आजिज़ रहे और ना दूसरों के हुकूक़ को पामाल करे। इस सिफत की बुनियाद घर वालों को वालदैन को रखनी होगी कि वो अपनी तमाम औलाद के साथ एक जैसा सलूक करें, किसी को दूसरे पर मुकद्दम ना करें, लड़के और लड़की के दरमियान फ़र्क ना करें। इस पर फिर कभी हम बात करेंगे, तरबियत है औलाद के ज़िमन में, इस पर फिर कभी बात करेंगे कि लड़के और लड़की के दरमियान जो फ़र्क किया जाता है, कितनी रिवायतों में लड़की के हवाले से फजीलत को बयान किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक माशरे में यह है कि लड़के को लड़की के ऊपर मुकद्दम किया जाता है। खूबसूरत और मामूली सूरत के बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया जाए, जहीन और कुन जहन के दरमियान फ़र्क ना किया जाए, यहाँ तक कि इजहार मोहब्बत करते हुए भी एक जैसा सलूक किया जाए ताकि बच्चों के दरमियान हसद और कीना पैदा ना हो और सरकश और हंसते बढ़ जाने वाले ना हो जाएं। अगर बच्चा देखे कि घर में तमाम अफराद के हुकूक का लिहाज किया जाता है तो समझ जाएगा कि माशरे में भी एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना है। लेकिन अगर घर में अफराद खाना के हुकूक का लिहाज ना रखा जाए तो बच्चे में सरकशी और तजावुज़ की आदत पैदा होगी और पुख्ता हो जाएगी। अगर कोई बच्चा किसी भी मामले में दूसरे की बारी का ख्याल ना रखे और लोगों का हक़ ज़ाया करे और उसके वालदैन या तरबियत करने वाले इस अमल पे उसकी हौसला अफजाई करें, तो इस तरह ये लोग उस मासूम बच्चे के बारे में खयानत के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि इस तरह वो बचपन ही से समझने लगेगा कि जोर आवरी और बग़ैर हक के आगे बढ़ना एक तरह की होशियारी और हुनर है। और जब ये बच्चा बड़ा होगा, माशरे का में कदम रखेगा अमली ज़िंदगी में, तो ये अगर किसी काम का जिम्मेदार करार पाएगा तो इसका वाहिद मकसद क्या होगा? दूसरों के हकूक पामाल करना और सिर्फ अपनी जात को फायदा पहुंचाना। हजरत फातिमा के घर में भरपूर अंदाज में दर्स दिया जाता था, मामूली सी मामूली बात में भी हकूक और नज्म व जब्त का ख्याल रखा जाता था। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने लिखा कि एक दिन पैगंबर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा तो पैगंबर ने थोड़ा सा दूध इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया। इतने में सैयदुश शहदा उठे और दूध का बर्तन इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेना चाहा, जैसा कि होता है अमूमन छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से चीज़ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पैगंबर ने उनको लेने नहीं दिया और फरमाया कि हसन ने पहले मांगा था, लिहाजा बारी का ख्याल रखना चाहिए। पांचवा दर्स जो शहजादी के घर से मिलता है वो इस बात का है, खेल कूद का। माहिरीन तरबियत का कहना है कि बच्चे को खेल कूद की आज़ादी देनी चाहिए, जैसा कि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ों की तरह संजीदगी से बैठा रहे, बच्चों वाली हरकतें ही ना करे। तो ये सही नहीं है, अगर एक बच्चा बच्चों वाली हरकतें ही ना करे तो इसका मतलब है उसके साथ कोई मसला है, वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। तो ये बताया जा रहा है कि वालदैन को फुर्सत मयस्सर होने की सूरत में बच्चों के साथ खेल में हिस्सा लेना चाहिए, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, वो दिन भर खेलते ही रहें और तकरीब कारी करें और पढ़े ना। पढ़ाई का वक्त भी मुकर्रर होना चाहिए और बच्चों के खेल कूद का वक्त भी मुकर्रर होना चाहिए, और वालदैन उसमें उनका साथ दें अगर उनके पास फुर्सत है तो कोशिश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन के साथ खेलते थे। जनाबे जाबिर कहते हैं, मैंने देखा पैगंबर इस्लाम हाथ पांव के बल चल रहे थे और हजरत हसन आपकी पुश्त पर सवार थे। एक और रिवायत मिलती है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से कि एक दिन हजरत हसनैन काफ़ी रात तक रसूल अल्लाह के घर में खेलते रहे। रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि अब अपनी माँ के पास चले जाओ। तो जब दोनों शहजादे घर से बाहर निकले तो बिजली चमकी और रास्ता रोशन हो गया और वो दोनों शहजादे अपने घर पहुँच गए। ये देख कर नबी ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने हम अहले बैत को मौसम करार दिया। ये तो थे पांच तरबियतें उसूल, तरबियती उसूल जो सीरत से बयान किए। एक माहिर नफ्सियात ने कहा कि बच्चे को जीनियस बनाने के लिए यहूदी वालदैन ये करते हैं कि ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता है। और एक बात ये बताई गई कि यहूदी जो है अपनी औलाद को ज़हीन बनाने के लिए उसके दुनिया में आने से पहले का जो वक्त होता है उसमें बच्चे की माँ से मैथ के मुश्किल तरीन सवालात हल कराते हैं। क्यों ये सब कुछ क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि पूरी दुनिया पर वो हुकूमत कर सकें, पूरी दुनिया की दौलत पर यहूदी अपना कब्ज़ा जमा सकें। उनका ये हदफ और मकसद है, इसके लिए वो कोशिशें करते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। ये बात हमने क्यों बयान करी? ये बात हमने इसलिए बयान करी कि हमारे यहाँ भी एक हदफ बयान किया जाता है बच्चों के हवाले से। ज़बानी कलामी एक हदफ हम भी बयान करते हैं, और वो हदफ क्या है कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे जो हैं वो लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिपाही बने। अब देखना यह है कि हम इस हदफ और मकसद के लिए कितनी कोशिशें करते हैं और कितनी कामयाबी हासिल करते हैं और कर चुके हैं। हमें सोचना होगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाने वाला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाने वाला एक बेहतरीन तोहफा नेक सोले औलाद है जो कि इमाम की नुसरत करे। इस सोच के तहत औलाद की तरबियत की जाए, हदफ ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पढ़ाया ना जाए, उसको मुसल्ला इबादत पर इबादत में मशगूल रखा जाए, ये मतलब नहीं है, बल्कि अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी तरबियत की जाए, मगर दीनी तालीम लाजमी है। मुसलमानों के बच्चे काबिल तरीन अफराद बने, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों के लिहाज से काबिल तरीन अफराद होने चाहिए। करबला की माओं का हम बहुत जिक्र सुनते हैं, लेकिन उनके अमल से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश की जाए। करबला की माओं ने इमाम वक्त को तनहा नहीं छोड़ा, इमाम वक्त का भरपूर साथ दिया है, और इस हद तक साथ दिया कि अपने जिगर गोशों को सैयदुश्शहदा पर कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। बस मोमिनात, मौजू को यहीं पे रोकेंगे। और शहनाब फ़ातमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मसाइब तसलसलवार जो बयान हो रहे हैं, उसमें आज ये हिस्सा बयान करेंगी कि अब हज़रत फ़ातमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हालत तश्वीशनाक हो गई तो मौलाए कायनात ज़रूरी कामों के अलावा आपके पास से जुदा ना होते थे। अस्मा बिनते उमैस आपकी तीमारदारी करती, हज़रत हसनैन और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम आपके बच्चे अपनी माँ की ये हालत देख रहे थे, आपसे बहुत कम जुदा होते थे। कभी शहज़ादी बेहोश हो जाती थी, कभी होश में आ जाती और आंखें खोलकर अपने बच्चों पर हसरत भरी निगाह करती। जब वक्त आखिर आया है तो आपने एक जानिब देखा और फरमाया, जिब्राइल पर सलाम, रसूल अल्लाह पर सलाम, खुदाया अपने पैगंबर के साथ महशूर करना। उसके बाद वहाँ मौजूद हाजरीन से फरमाया कि अहले गिरोह, अहले आसमान गिरोह दर गिरोह उतरते दिखाई दे रहे हैं। अब खुदा के फरिश्ते और जिब्राइल मौजूद हैं, मेरे बाबा भी हाजिर हैं और फरमा रहे हैं, बेटी हमारे पास आ जाएं, आखरत की नेमत आपके लिए बेहतर हैं। जनाब जैद इब्ने अली जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम का बयान है कि हज़रत फ़ातमा ने जनाब जिब्राइल पैगंबर इस्लाम और हज़रत इज़राइल को सलाम किया तो इन शख्सियात ने आपके सलाम का जवाब दिया, जिसे घर में मौजूद तमाम अफराद ने सुना। उस वक्त उम्दा खुशबू फैल गई जिसे सबने महसूस किया। अस्मा बिनते उमैस इस तरह बयान करती, शहज़ादी क़िबला रुख लेट गईं और फरमाया, थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ देना, अगर मैं जवाब ना दूँ तो समझ लेना मैं दुनिया से रुख्सत हो गई हूँ। अस्मा कहती है, मैंने थोड़ी देर सब्र किया और फिर मैं हुजरे के दरवाजे पर आई और मैंने शहज़ादी को आवाज़ दी। जब जवाब नहीं आया, शहज़ादी के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया तो देखा अब दुनिया से रुख्सत हो चुकी हैं। अस्मा ने अपने आप को जनाजे पर गिरा दिया, बोसे लेती और रोती जाती थी और कहती जाती थी कि रसूल अल्लाह की खिदमत में जाएं तो अस्मा का सलाम कहिएगा। अचानक हजरत हसनैन दरवाजे से दाखिल हुए तो देखा कि उनकी वालदा क़िबला रुख लेटी हुई हैं। अपनी वालदा की हालत पूछी और कहा कि ये वक्त हमारी माँ के सोने का तो नहीं है। अस्मा ने अर्ज़ किया, मेरे अजीज़ों, तुम्हारी माँ दुनिया से रुख्सत हो गई है। इमाम हसन ने अपने आप को माँ के जनाजे पर गिरा दिया। कभी वालदा को चूमते और कभी कहते, अम्मा जान मुझसे बात करें। इमाम हुसैन अपनी मादरे गिरामी के कदम चूमते और कहते, अम्मा जान मैं आपका बेटा हुसैन हूँ, उससे पहले कि मेरा दिल फट जाए आप मुझसे बात करें। अस्मा ने कहा, अपने वालिद के पास जाएं और वालदा की वफ़ात की इत्तला दें। शहजादे घर से निकले तो उनकी ज़बान पर ये कलमात जारी थे, वाह मोहम्मदा, आज आपकी मौत का सदमा हमारे लिए फिर ताज़ा हो गया है क्योंकि आज हमारी माँ दुनिया से रुख्सत हो चुकी हैं। शहजादे मस्जिद में आए जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बच्चों ने अपने बाबा को माँ की मौत की खबर दी। मौलाए कायनात सुनकर सदमे से बेहोश हो गए। जब आपके चेहरे मुबारक पर पानी डाला गया तो आपकी तबीयत कुछ संभली और दर्दमंदाना लहजे में कहा, बिनते मोहम्मद, अब मैं किससे तसल्ली हासिल करूँगा? जब तक आप जिंदा थी आपको देख कर मुझे तसल्ली होती थी। मौलाए कायनात सख्त बेताब हुए और बहुत रोए और आपने ये मरसिया पढ़ा कि दो दोस्तों के इज्तमा का अंजाम जुदाई है। पैगंबर के बाद फातिमा का दुनिया से रुख्सत होना इस बात की दलील है कि कोई भी दोस्त हमेशा नहीं रहता। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैकी या फातिमत अज़्ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़िही या सैयदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ना व तवस्सलना बिकी इलल्लाहि व क़द्दमनाकी बैन यदै हाजातिना फिद दुनिया वल आख़िरति या वजीहतन इंदल्लाह शफ़ाइतना इंदल्लाह।